आओ पवन सुत बजरंगी, हे अंजनी के लाल कृपा दृष्टि सुत पे करो, जीवन हो खुशहाल। राम रामे तिरामे तिरमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम बरानने। आदरणीय परमादरणीय प्रातस्मरणीय वंदनीय अर्चनीय हमारे सभी कथा श्रोता, आज राठौर कैसेट कंपनी दिल्ली के माध्यम से आप लोगों के समक्ष बहुत सुंदर कहानी पेश करने के लिए जा रहे हैं। कहानी का नाम है बेरहम जेठानी। बदलते हुए समय में इंसानों की मानसिकता कहां से कहां चली जा रही है, आइए कहानी में प्रवेश करते हैं।
रिश्तों का कोई मोल नहीं और कैसे तुम्हें समझाएंगे। जीवन में इंसान धन दौलत बचाता है, रिश्ते नहीं बचाता है। और जिसने रिश्ते बचा लिए तो उसे धन दौलत बचाने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए समय कहां से कहां जा रहा है। साथियों, आध्यात्मिक दृष्टि इंसान की विलुप्त होती जा रही है, काम वासना सिर पर चढ़ती जा रही है और बिना गुरु के जीवन नरक के समान होता है। तो आइए बेरहम जेठानी की बहुत ही खतरनाक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। जो शब्द मेरे पास आए थे वो मैं कैसेट के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं।
के भैया भाभी के साथ में रहे छोटो भ्रात, पिता स्वर्ग से धार गए बूढ़ी घर में मात। एक निम्न श्रेणी का परिवार था, पिता की मृत्यु हो गई, दो भाई थे, बड़े भाई के ऊपर घर की जिम्मेदारी है, वो शादीशुदा है, उससे एक छोटा भाई है वो पढ़ता है। और दोस्तों
बड़ा भाई घर की जिम्मेदारी उठाता है, शादी जल्दी हो गई और फिर नौकरी करने के लिए घर से चला गया है। आगे
परदेश रहे बड़ो भाई, घर छोटो करे पढ़ाई।
सारे समय एक भाई ने यह ठान लिया कि मेरा भविष्य बर्बाद है, कम से कम छोटे को तो पढ़ा लो। माता व्रत है, ज्यादा दिखता भी नहीं है, तो बड़े भैया की जो पत्नी है वो घर चलाती है, देवर को पढ़ाती है लिखाती है। भविष्य संवारती है, लेकिन समय समय किसी के बाप की जागीर नहीं होती है। और दुनिया आदमी हर चीज से जीत जाता है लेकिन समय से नहीं जीतता है। पता नहीं कब अच्छी हवा आ जाए और कब बुरी हवा आ जाए। दोस्तों
रहे बुरे क्या लगाई आई, घर छोटो करे पढ़ाई।
जिम्मेदारी का वजन सर पे इतना है कि बड़ा भैया प्रदेश कमाता है, वो छह छह महीने नहीं आता है। पत्नी के कान भर देते हैं गांव के लोग, कहते हैं कि तेरा जीवन तो ऐसे ही जा रहा है, मजा तो छोटे वाला लेगा। तो महिला की बुद्धि बदल गई और सोचने लगी मेरी जवानी ऐसे ही जा रही है, मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है। और दोस्तों
धोखा खाती है जवानी कि अब नारी घर बोरा। तो पिया को नहीं ठुकराई के घर छोटो करे पढ़ाई।
श्रोताओ, जो स्त्री परिवार लेके चल रही थी उसके विचार बदल गए। वो भी सोचने लगी मेरा तो जीवन है, कहीं ऐसा ना हो जब चना हो तो दांत ना हो, दांत हो तो फिर चना ना हो, मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगी। उन्हें अपने घर की चिंता है तो मुझे भी अपने जीवन की चिंता है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है,
उन्हें मुझ पर तरस नहीं आता। आखिरकार मेरी भी पत्नी है, उसका भी मन करता होगा बाजार घाट घूमने का, रिश्तेदारी में जाने का, अच्छे कपड़े पहनने का।
के भोग विलास में नार ने दयो नेह लगाए, देवर पे गंदी नजरी रखे पत को रही भुलाए।
सोचने लगी जीवन बार बार नहीं मिलता है। और दोस्तों मैं तो एक ही बात कहता हूं कि जीवन तो हर बार मिलता है, हर रोज मिलता है, लेकिन जीवन में मौत एक बार ही मिलती है। ये गलत नजर है, गलत सोच है उस स्त्री की कि जीवन बार बार नहीं मिलता है। बड़े भैया को धोखा दे रही है और छोटा भाई अंधा हो रहा है। दोस्तों
के बचपन से जिन पर जिम्मेदारी अक्सर वही धोखा खाते हैं। इतिहास गवाह है जिन्होंने घर की जिम्मेदारी उठाई है, अंत में उनके हाथ में एक ही बात आई है कि तुमने किया क्या है। अंत में सम्मान भी नहीं मिलता है उनको, लेकिन एक चीज जरूर मिलती है उन्हें।
मेरे भैया, बड़ा भाई दिन रात मेहनत करता है प्रदेश में, और उसे अपनी पत्नी पर भरोसा है कि मेरे साथ इस घर को बनाने में जी जोर से मेरा साथ देती है मेरी पत्नी, लेकिन धीरे धीरे देवर से नजदीकियां बढ़ाती गई है दोस्तों। और हुआ ये,
अरे धीरे धीरे देवर लोरी गाई, क्या बात है सुखवीर, और पत को सुख को नहीं देवर से पाई। अरे माँ बेटा के रिश्ता को के वो भाग लगाती है, सुधीर देवर भावी को रिश्ता नारने दूषित करी डालो।
दोस्तों,
पढ़ाई छोड़ के भोग विलास में वो लड़का विलुप्त हो गया भाभी के साथ।
भाभी घर की मुखिया थी, अब भाभी मुखिया नहीं है, अब तो भाभी सिर्फ आनंद के लिए मुखिया है।
बड़ा भाई नौकर की तरह काम करता है। और श्रोताओं,
साल खांड जब बीत गए, गए भैया घर पे आए, भैया सियानों है गो, अब शादी दिए रचा।
बड़ा भाई जिम्मेदारियां उठा रहा है, सोचने लगा कि हमारा छोटे अब बड़ा हो गया है, अब हम इसकी शादी करेंगे। तो बड़े भाभी बोली, अरे इतनी जल्दी है शादी की, पढ़ने दो लिखने दो, कि अपनी तरह ही रखोगे कहीं प्राइवेट कंपनी में काम कराने के लिए, पढ़ने दो।
केवल विद्या जग सुनो लगे सुनो पति महाराज, पिया जी मेरी सुनो पति महाराज,
पढ़ रहे हैं और चरित्र के बहुत अच्छे हैं मेरे देवर।
भैया बोला, जब उसका बड़ा भाई चरित्रवान है तो छोटा भैया क्यों नहीं होगा। भाभी बोली, इतने अच्छे हैं, गांव की महिला भी तारीफ करती है इनकी, किसी की तरफ बुरी नजर से नहीं देखते हैं।
और बोली, अरे पढ़ लिख के कछु बन जाए, अरे होए प्यारो नाम,
बड़ी भाभी हूं और बड़ी भाभी माँ के समान होती है, जानते हो सुखबीर, प्रिया चरित्र चल रहा है।
ए सुंदर सी लड़की ढूंढूंगी, अरे दूंगी प्यार चाहे,
बड़े भैया को ऐसे करके समझाया पत्नी ने कि तुम्हारा भाइया मेरा देवर है, मेरे लिए तो बेटा है। मैं सोच रही हूं कहीं पढ़ लिख के नौकरी करेगा तो हमारा नाम होगा। भैया बोला कह तो सही रही हो तुम, लेकिन समय खराब चल रहा है और शादी करना उचित है। गांव के एक आध व्यक्ति ने कहा कि नंबरदार अपने भैया की शादी कर दो। बोले कोई बात? बोले बात कोई नहीं है, लेकिन कह रहे हैं तो कर दो। तो दोस्तों
सब और सगुन साथ सब पूर्ण भए और सुंदर नारी आई है। भैया ने विवाह कर दिया और हुआ ये, अरे बहू देख नहीं आए रही नारी।
जल रही है, अब ये मेरे आसपास नहीं भटकेगा, बहुत सुंदर आई है। लेकिन दोस्तों एक कहावत है,
अरे कुत्ता हाड़ मांस नहीं छोड़े, चाय माय रबड़ी खीर खवाई हो, अरे यार कठाक कब हुना हो, चंदन मलिया गिर के पास लगाई।
गंदे लोगों को अच्छे लोग कभी पसंद नहीं आते हैं। शादी करने के बाद के भैया चलो गौ शहर, अरे शहर के भावज अपनी चलाती है।
हुआ ये कि दौरानी को देख करके जलती है, सगुन साथ सब पूर्ण हुए, इसे दसई कहते हैं, चल के फिर बहू घर आई। लेकिन भावी का इतना खौफ है देवर को कि वो अपनी पत्नी को देखता तक नहीं है। लेकिन लड़की बहुत समझदार थी, एक ही बात में समझ गई कि इन देवर भावी का कोई चक्कर है। बोली कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों संभल ही जाएंगे। खैर कोई बात नहीं।
भावी के चुंगल फसो, पत्नी रही दुखिया, हर अत्याचार करने लगी, भावग रही खिसिया।
घर का सारा काम कराती है, और दोस्तों लड़की सब समझती तो है कि मेरी जेठानी कौन सी रास्ता चल रही है, लेकिन कहना कुछ नहीं चाहती है वो। और दोस्तों मैंने ये गीत लिखा है,
अरे पाप की रास्ता बड़ी मिठाती है, जो घोर नरक ले जाती, दादाजी वो घोर नरक ले जाती,
देखा होगा लोग बुरे बुरे कर्म करते हैं वो बड़े खुश रहते हैं, और जो अच्छे रास्ता पर चलते हैं वो बड़े दुखी रहते हैं। तो इसी पर मैंने एक गीत लिखा है,
पाप की रास्ता बड़ी मिठाती है जो घोर नरक अनुगामी, पाप की रास्ता बड़ी देवल, अरे नगर पत्नी व्रत नाई निभावे, अरे भौजी घर को नाच रचावे, जेठानी जेठानी अपना हुक्म बजाती है तो घोर नरक अनुगामी, पाप की रास्ता बड़ी मिठाती है तो घोर नरक अनुगामी। गलत काम को हरे गलत नतीजा, हरे गलत काम को गलत नतीजा, हरे नौरानी को मारे घसीटा, सुधीर बाबू अरे गलत काम को गलत नतीजा, अरे लाज शर्म नहीं आती है तो घोर नरक अनुगामी, पाप की रास्ता बड़ी मिठाती है तो घोर नरक अनुगामी।
पति को अपनी पत्नी की कोई चिंता नहीं है, वो भावी में विलुप्त रहता है। और लड़की बड़ी सज्जन है, वो सोचती है ये मेरा कैसा पति है जिसे मेरी तनिक भी चिंता नहीं है। भौजाई मारती है, पीटती है, जेठानी अत्याचार करती है दौरानी पर, तो वो बड़ी माँ के समान समझ करके कुछ नहीं कहती है। हर नए दिन का इंतजार करती है कि आज नहीं तो कल अच्छा होगा, आज नहीं तो कल अच्छा होगा, आज नहीं तो परसों अच्छा होगा। लेकिन जहां दुष्ट रहते हो मां, कभी अच्छा नहीं होता है।
अरे घर को करवावे काम रे दासी लई बनाई,
तक नहीं खाती है समय से। सोचती है विधाता मेरा ये क्या जीवन है, और ये लोग मुझे हर रोज मारते हैं, एक दिन क्यों नहीं मार देते हैं। और देवर के साथ बड़ी मीठी मीठी बातें करती है भौजाई, कहती है कि आज नहीं तो कल ये मरेगी जरूर, फिर हमारे तुम्हारे बीच का रास्ता साफ हो जाएगा। और दोस्तों
के वो पति सुख से वंचित हो गई।
पति सुख तो भाभी लेती है ना।
अरे वो पति सुख से वंचित हो गई, हर रो रो समय बिताती है।
गिफ्ट में मिल रहा है चरित्रहीन है तू।
अरे चरित्र ही नया छे पलवो पीहर को खबर आई जाती है
साथियों। उस लड़की पर एक आक्षेप पीछे से और लगा दिया, क्योंकि जब लोग सताने वाले होते हैं तो वो एक साइड से नहीं चारों दिशाओं से सताते हैं, खाना पीना टाइम से नहीं खाने देते हैं, मारने का बहाना ढूंढते हैं, लड़ाई का बहाना ढूंढते हैं। और वो भौजाई क्या, वो कसाई बन गई है, बात बात पे मारती है, और जब पति सामने खड़े होकर पिटवाता है तो उसके प्राण पता नहीं कहां रहते हैं। कभी भी क्रोध करके भावज को जेठानी को आंख दिखाती है तो पति मारता है। अंत तो गत्ता उसके ऊपर एक आरोप लगा दिया कि तू चरित्र ही नहीं, हमारे गांव के लड़कों को देखती है, खबर पीहर तक जाती है। दोस्तों
के पीहर वाले आई गए सब भांति दई समझा, यहीं से जीवन कटे गो बेटी मैया नहीं बतला।
बेटी ये शादी है और ये तेरे पति हैं, कोई बैल नहीं है जो इन्हें बेच करके दूसरा ले आओ, यहीं से तेरा जीवन कटेगा, क्यों कमी करती है। हाथ जोड़ के जेठानी से कही कि बेटी माने कि मेरी बेटी चरित्र में बहुत अच्छी थी, आप घर जाकर ट्राई कर सकते हैं, पड़ोसियों से पूछ सकते हैं। मेहमान से कहा कि आप गांव जाकर सबको पूछ लो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है।
बोले से समझा जाओ, छत पे खड़े होकर के घूंघट मार के डोला करे।
लड़की दिल में सोचने लगी, मैं तो छत पे जाती भी नहीं हूं।
अरे पति की नफरत देखी,
दुनिया नफरत करे कोई बात नहीं, लेकिन स्त्री से उसका पति प्रेम करता है तो सबकी नफरत झेल लेती है वो, लेकिन वहां तो उल्टा है।
अरे पति की नफरत देखी, अरे दुखी भई पति विरता नारी, भोजन पानी दयो है थोड़ी, तन में लग गई बीमारी भैया।
जिसके साथ जीवन कटना है वो सालों से नहीं सुधरा तो अब नहीं सुधरेगा, समझने लगी मेरा भाग्य ही बोधा है।
भोजन पानी छोड़ दिया है लड़की ने, कहने लगी कि तुम जेठानी के साथ अपनी भाभी के साथ जीवन काटना, मेरी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। अरे बुखार से पीड़ित नारी, अरे काम काल नहीं करे आए नहीं नाटक है। खाना पीना छोड़ दिया, बुखार ने शरीर तोड़ दिया, खटिया में लगी है लड़की और भौजाई गाली देती है, जेठानी कहती है नौटंकी करती है, मक्खड़ बनाती है। गला घोंट दो इसका, खटिया में पड़ी रहती है, कोई काम नहीं करती है, मर जाएगी तो कह देंगे कुछ खाना पीना खा नहीं रही थी, तबीयत खराब थी, अचानक मर गई, हमें क्या मालूम कैसे मर गई। तो लड़का बोला, भाभी ऐसे मारना ठीक नहीं है, एक बार तो घर वाले आई गए, दोबारा और बुला लो, फिर बार बार थोड़ी बुलाएंगे, तीसरी बार ये मर जाएगी, तीसरी बार मरने की खबर भेज देंगे। तो भाभी बोली, ये ठीक है, खबर फिर पियर भेजी है कि तुम्हारी बेटी नाटक करती है, पड़ी रहती है, खाती है पीती है मौज करती है, कोई काम नहीं करती है। तो मासाब लड़की का भाई बड़ा ही तेज था, वो सोचने लगा मम्मी पापा को और मुझे उस लड़की ने कोई बात नहीं बताई, कोई अंदरूनी बात हो, उसके साथ कोई षड्यंत्र चल रहा हो। और ध्यान देना, अच्छे घर की बेटियां माता पिता और भैया से छुपा लेती हैं, उन पर अत्याचार होता है। तो आज उसके भाई ने उस लड़की की सहेली को तैयार किया कि चलो उसके गांव चलते हैं, उसकी ससुराल चलते हैं और थोड़ी देर तुम उनसे पूछना क्या परेशानी है उसे, मम्मी पापा को तो कुछ बताती नहीं। और हुआ ये दोस्तों, मेरा तो एक ही कहना है, अगर आपकी बेटी की रोज उस शिकायत आती है, एक बार अपनी उसकी सहेली को जरूर उसके सामने खड़ा कर देना, कोई गोपनीय बात होगी तो वो लड़की तुम्हें न बताकर, घर वालों को न बताकर, मां को न बताकर सहेली को जरूर बताएगी। सहेली हाल पूछ रही, क्या हुआ बहन मोई बतलाना, क्या हुआ है? सहेली पूछने लगी, तू क्या छुपा रही है, कोई बात तो है जो तू बताना नहीं चाह रही, यहां तुझ पर जुल्म करते हैं। तो आंखों में आंसू भर के अपनी सहेली से बोली है कि बहन, हरे मम्मी पापा से मैंने शर्म करी और सहेली को साथ बताया है और खबर भेज के थाने में हर लेडीज पुलिस को बुलाया है। क्या तेरे साथ ऐसा अत्याचार होता है? लड़की ने अपने बिस्तर के नीचे से छोटी छोटी बोतलें निकाल के दी कि ये दवा मेरे खाने में मिलाई जाती है, इससे मैं धीरे धीरे मर जाऊंगी, लेकिन मैं कहूं किससे? मम्मी कहती हैं कि ये तेरा पति है, बैल नहीं है जो बदल के ला दूं, यही रहना है तुझे, यही से जीवन कटेगा। और ये जेठानी मेरी जेठानी नहीं है, इसकी रखेल है, इसका पति परदेश में रहता है। अरे तेरे करी लाए भैया ने पुलिस लई बुलवाई, we'll be right back।
भैया दमदार होता है, और बहन को अगर किसी पर घमंड होता है तो भाई पर होता है। अगर आप इस वॉल्यूम को कथा को सुन रहे हो, माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं, बहनों को अगर गर्व होता है तो भैया पर होता है, बहनों के साथ अत्याचार होता है तो सबसे बड़ा न्यायाधीश भैया होता है। अगर आप भाई हैं कैसेट को सुन रहे हैं तो आगे फॉरवर्ड करना। भैया ने ये कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं बेरहम जेठानी। जहां तक हो इस कहानी को दूर दूर तक पहुंचाना, समाज जागृत हो जाए, क्योंकि समझदार घर की इज्जतदार घर की बेटियां हैं, अत्याचार सहन करती रहती हैं।
अरे सुध हीरे